السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. الحمد للہ ہم سب لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہوں گے کہ بہترین سے بہترین روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے کہ انسان بھوکا رہے، بھوک کو برداشت کرے یا پیاس سے اس کے زبان خشک رہے تو یہ روزہ ہو گیا، بلکہ انسان کے پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے. اور اس جسم میں سب سے اہم یہ کہ اس زبان کا روزہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں روزہ ایک عبادت ہے، اور عبادت کے اندر انسان گناہوں سے بچتا ہے. دیکھیں، حج پہ جب ہم جاتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ کوئی شہوت کی بات ہو، نہ کوئی فسق و فجور کی بات ہو، نہ کوئی جھگڑا کرنا ہے، کوئی بھی چیز الاؤڈ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عبادت کی حالت میں ہیں، آپ احرام کی حالت میں کتنے کیئرفل رہتے ہیں. تو روزہ بھی چونکہ عبادت کی حالت ہے، اس لیے اس میں کوئی کسی قسم کا بھی گناہ ہم نے نہیں کرنا. لہٰذا ہم اپنے آپ کو گناہوں کی جگہوں سے بچائیں، گناہوں کے موقع سے بچائیں، ایسے چیز میں پڑھنے سے بچائیں جس میں ہمیں یہ ذرا بھی اندیشہ ہو کہ اس میں ہم سے کوئی گناہ ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایسی مجلسیں جہاں پر فحش گوئی ہو، غیبت ہو، گالم گلوچ ہو، یا شیخیاں ماری جائیں، اپنی بڑائیاں بیان کی جائیں، کوشش کریں کہ ایسی چیزوں سے دور رہیں. اسی طرح ایسی فون کالز، آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندی کے ساتھ جب بھی میں بات کرتی ہوں تو کوئی نہ کوئی غیبت ہی ہوتی ہے، تو ان سے بات کرنے کو اوائڈ کریں. اب تو وائس میسیجز ہو جاتے ہیں، تو آپ نے کسی سے بات کرنی بھی ہے تو اس کو وائس میسیج چھوڑ دیں، کوئی ضروری بات بھی ہے. ضروری نہیں کہ ہم دوسرے کو کال کر کے گھنٹہ گھنٹہ بات کرتے رہیں، اور اس میں وقت کا پھر پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح کسی بھی ایسی جگہ پر جانے سے پرہیز کریں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ میری نظروں کی حفاظت نہیں رہے گی، میری نظریں وہاں پر ادھر ادھر ہو سکتی ہیں، کوئی آگے بے حیائی کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی کچھ ہوتی ہے، تو میری نظر شاید اس طرح سے میری حفاظت میں نہ رہ سکے، تو ایسی جگہوں پہ جانے سے بھی پرہیز کیجیے. اسی طرح ایسی چیزیں سننے سے پرہیز کیجیے جو گناہ کی ہیں، کوئی میوزک ہے یا کوئی اور کوئی کسی کی بات چیت کرتا ہے تو وہ سب سننے سے بھی پرہیز کریں. اس کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہم کم سے کم ملنا جلنا رکھیں اس مہینے میں. ہاں، کسی ضرورت مند کی کوئی ضرورت پوری کرنی ہے، یا بیمار کی عیادت کرنی ہے، یا جنازہ پڑھنا ہے، تو ایسی چیزیں تو ضروری ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم چار کام کر لو تو جنت میں جاؤ گے، اور ان چار کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ دو کام وہ ہیں جو کہ آپ بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. ایک تو مریض کی عیادت کرنا، اور دوسرا نماز جنازہ پڑھنا. دو چیزیں آپ آج کل کر ہی رہے ہوں گے، روزہ رکھنا اور صدقہ کرنا، تو چار کام آپ کے پورے ہو گئے. تو مریض کی عیادت کرنا بھی آسان کام ہے، نماز جنازہ بھی کئی نہ کئی مسجد میں ہوتا رہتا ہے، تو یا جنازہ گاہ جن ملکوں میں جنازہ گاہ ہے وہاں پہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں. تو اس سے انسان کو اتنا بڑا اجر ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن بیمار کی عیادت کرنے بھی جائیں تو یہ مطلب نہیں کہ پورے دن سے بیٹھے رہے اور کھانے کا انتظار کرتے رہے کہ افطار کا ٹائم ہو تو افطاری کر کے ہی جائیں اب، یا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اتنا زیادہ تھکا دیں کہ وہ مریض بچارہ एक अपनी बीमारी से तंग और ऊपर से आने वालों की वजह से तंग हो जाए। तो ऐसा नहीं करना, बल्कि हमें मुनाफ़े वक्त के लिए जाना है और कोशिश कीजिए कि उनके लिए कुछ लेके जाएं। देखिए, हम सब कोशिश यही कर रहे हैं आजकल कि हम ज्यादा नेकियां कमाएं। थोड़ा वक्त है, सिर्फ गिनती के 29 या 30 दिन है, इन्हीं में हमने जो करना है वो करना है। तो इनमें वक्त को जाया करने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। एक वो काम है जो गुनाह के होते हैं, दूसरे वो काम है जो नेकी के होते हैं, और तीसरे वो काम है जो ना गुनाह के ना नेकी के, बल्कि वो ऐसे काम है जिनमें के इंसान जब पढ़ता है तो अपना बस टाइम पास, जिसको कहते हैं टाइम पास कर रहा होता है, वक्त गुजारी कर रहा होता है। उनके अंदर गुनाह की तो कोई चीज नहीं होती, मगर कोई नेकी की भी काम ऐसे नहीं होते कि कुछ सवाब मिल रहा हो। और अक्सर लोग इसी से धोखा खाते हैं कि वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है, कोई मैं गलत तो नहीं कर रही। मसलन ऐसे ही गेम्स खेलते रहना, मसलन ऐसे ही बहुत देर खबरें सुनते रहना, आपने कोई जरूरी खबर है सुन ली, बस काफी है। लेकिन खबरें सुनते रहना, अब तबसरे सुनते रहना, अब पॉलिटिकल जो उनकी डिबेट्स होती हैं उनको सुनते रहना, जो कई लोग बैठ के इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं उन में बैठ के और बेकार की ये गुफ्तगू करते रहना। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो गुनाह के तो नहीं है लेकिन नेकी के भी नहीं है। मिसाल के तौर पे इतना ज्यादा खाना बनाने में, इफ्तार बनाने में सारा दिन लगा देना, उसी की रेसिपीज देख रहे हैं, उसी की तैयारियां कर रहे हैं, आधा दिन उसी में गुजार दिया, तो गुनाह तो नहीं है, इफ्तार बनाना है आपने, लेकिन वो नेकी भी ऐसी नहीं मिल रही कि आप इतनी देर वो वक्त लगाएं। आप 1-1.5 घंटा पहले भी उठ के कुछ ना कुछ तैयारी करके कुछ बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपने वक्त को मैनेज करें और इस धोखे में ना पड़े कि गुनाह नहीं हो रहा तो ठीक है कोई बात नहीं, बल्कि ये भी ना करें कि कोई लम्हा ऐसा गुजरे कि जो नेकी के बगैर हो। देखिए, अगर आप सो भी रहे हैं ना तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, इस नियत से अगर आप सो रहे हैं कि इस सोने में भी मैं रेस्ट लूंगी, मैं आराम लूंगी, तो मुझे ताकत मिलेगी मजीद बेहतर इबादत करने की, तो ऐसा सोना भी आपकी इबादत है, उसमें भी आपको अजर मिल रहा है। मगर फिर ये ना हो कि इतना लंबा सोते रहे कि सुबह से सोए और जोहर भी चली गई। तो अपनी इस टाइम को बहुत ही वाइजली हमने, बहुत सोच समझ के हमने गुजारना, समझदारी के साथ गुजारना, और एक एक अपने लम्हे की हिफाजत करनी है। क्या पता अगला रमजान हमें मिले भी या नहीं मिले, और अगर मिले भी तो कैसी सूरत में मिले। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने पिछले रमजान में रोजे भी रखे और इबादतें भी की, लेकिन इस रमजान में वो इस कदर बीमार हैं कि वो रोजा नहीं रख सकते। उनके लिए तो फर्ज नमाज पढ़ना भी कुछ मुश्किल है, कहाँ लंबे लंबे नफाफिल अदा करना। तो हम नहीं जानते कि किसकी क्या हालत हो अगले रमजान तक, लिहाजा इस वक्त को कीमती जानिए कि जैसे मुझे एक खजाना मिल गया है, और मैंने इस खजाने को ऐसे जाया नहीं करना कि इसको सही से गुजारना है, मेरा कोई लम्हा भी जाया ना हो। वैसे तो पूरी जिंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए, वो सारी जिंदगी कीमती है, लेकिन खासुल खास रमजान का वक्त तो इतना कीमती है। इसके अंदर तलाश में रहें कौन से ऐसे काम हैं जो करके मैं ज्यादा अजर पा सकती हूँ, कौन से ऐसे काम हैं जो करके मुझे मेरी बख्शिश हो सकती है, कौन से ऐसे काम हैं जो करके मैं अपने दर्जात को बुलंद करा सकती हूँ। जैसे कि हमने पहले बात की थी कि ये दिन वो हैं जिनमें सेल लगी हुई है, जन्नत की सेल है ये, जन्नत में ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े प्लॉट खरीदें, ज्यादा बड़े बड़े घर बनाएं, ज्यादा बड़ा बाग लें, कोई किसी को भी कोई कैद नहीं, ना ही जन्नत इतनी छोटी है कि सारे ही लेंगे तो मेरे लिए क्या बच जाएगा। तो उसकी हिर्स रखें। देखें, वैसे तो आप ईमान लाके 5 फराइज जो अरकान है आपके वो अदा कर लेंगे इस्लाम के, तो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और सबको वो हदीस मालूम है और सबकी जुबानों पे रहती है कि देखो वो एक बद्दू आया और उसने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उसको ये पांच बातें ही बताई, तौहीद, नमाज, रोजा, जक़ात, हज, तो ये पांच बातें तो मैं पूरी कर रही हूँ, तो लिहाजा मुझे फिर किस चीज़ की फिक्र, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ये करेगा तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जन्नत के भी दर्जात हैं, जन्नत में भी हर एक का सेम मकाम नहीं है, जन्नत में कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, हर एक अपने अमल के मुताबिक उस जगह पर पहुंचेगा जहां उसका अमल उसको पहुंचाएगा। अगर हम दुनिया की ये हिर्स रखते हैं कि हमारा घर बड़ा हो, हमारी पास आसाइशें हर तरह की हों, हमारी गाड़ी ऐसी हो, हमारे घर में ये चीजें हों, तो जन्नत के बारे में हम ये क्यों सोचते हैं कि कोई बात नहीं, बस जरा सी जगह मिल जाए तो क्या, जबकि हमारे पास वक्त भी है, मौका भी है, जिंदगी की मोहलत है हमें मिली हुई, तो हम ऊंचे दर्जों की हिर्स क्यों ना करें, जबकि अल्लाह ताला खुद हमें ये हिर्स करने की तरफ दावत देता है। साबिकू इला मग़फ़िरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, सबकत ले जाओ एक दूसरे से, दौड़ो, वसारियो, दौड़ लगाओ, जल्दी करो। देखें दुनिया के कामों के अंदर जल्दबाजी अच्छी नहीं है, जो दुनिया के काम है ना इनमें आहिस्तगी, आहिस्तगी से मतलब है कि एकदम जल्दी करना, ये भी जल्दी हो जाए ये भी, ये अच्छी बात नहीं है। जल्दबाजी से मतलब कहीं पहुंचना है तो जल्दी तेज गाड़ी चलाई और वहां पहुंचने की तेजी दिखाई, इसी तरह जल्दबाजी की कि मैं इसको अब सुना दूंगी बातें दो, तो उसके अंदर फौरन फोन उठाया और जल्दी से उसको सुनाना शुरू कर दी कि तुमने ऐसे क्यों किया, ये क्यों, इन चीजों में जल्दबाजी अच्छी नहीं है। खाने में भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं, तो दुनिया की चीजों के अंदर आहिस्तगी अच्छी है कि आप आराम से काम करें, सब्र तहम्मुल के साथ काम करें, ये आदत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखरत के मामले में जल्दी पसंदीदा है, कि जल्दबाजी के इंसान आखरत के कामों को डिले ना करे, उनमें जल्दबाजी करे, उनके अंदर जल्दी करे, यानी उनको करने की हिर्स रखे, ये ना टाले के मैं कल कर लूंगी, परसों कर लूंगी, अच्छा हो ही जाएगा, नहीं, उनमें जल्दी करना पसंदीदा है, किसी काम को भी लटका के ना रखे। कोई भी आपने नेकी का काम करना है उसको करने में आगे बढ़े, जल्दी करें। आप देखें वसारियो भी आता है और साबिकू भी आता है, सारियो जल्दी करो, और साबिकू जब आप जल्दी कर रहे हैं तो उसमें भी दूसरों से सबकत ले जाने की कोशिश करें कि मैं उससे भी आगे चली जाऊं, उससे भी आगे, उन मुकाबले करें नेकी के। और देखें आखरत में अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नत में ना वलिकुल्लिन दरजातुम मिम्मा आमिलू वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा यअमलून, आखरत में हर एक के लिए वैसा ही दर्जा है जैसा उसने अमल किया, अल्लाह ताला गाफिल नहीं है तुम्हारे अमल से। आखरत में ऐसे नहीं कि सबको एक ही जन्नत मिल जानी है, सबकी जन्नत मुख्तलिफ होगी डिपेंडिंग ऑन कि उसका अमल कितना है। तो क्या हम नहीं चाहते, अगर दुनिया के मामले में सबसे अच्छा चाहते हैं जो कि 60 70 80 साल की जिंदगी ज्यादा से ज्यादा होगी, 90 साल की मिल जाएगी, वो भी बुढ़ापा तो किसी काम का नहीं होता, वो तो बिल्कुल निकम्मी उम्र हो जाती है, इंसान उसमें कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकता। तो अगर हम इतनी सी जिंदगी के लिए भी इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, इतनी भाग दौड़ करते हैं, तो हमेशा की जिंदगी, जो हमेशा की जवानी, हमेशा की हिम्मत, हमेशा की जन्नत है, उसके लिए क्या नहीं चाहेंगे कि वहां पर बुलंद दर्जे मुझे मिले, बुलंद दर्जों की हिर्स रखें और बुलंद दर्जों के लिए काम करें, काम पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। दुनिया में तो अगर आज कम मिला है ना, तो हो सकता है मेहनत करने से, आगे बढ़ने से, किसी को 4 पैसे और कमा ले, कुछ और उसका हासिल हो जाए, फिर थोड़ा और वो कुछ हासिल कर ले, तायुशात, लग्जरीज, लेकिन आखरत में जो एक मकाम मिल गया जन्नत में वो ही रहेगा, हमेशा तक के लिए। फिर चेंज नहीं कर सकते आपके, थोड़ी और मेहनत कर लूं तो चलो मैं जरा ऊपर के दर्जे ले लूं, अब नहीं, अब वो टाइम ओवर हो गया। लिहाजा जन्नत के लिए आला दर्जात का हिर्स रखें, आला दर्जात के लिए कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करें, अपने आप को खपाएं, अपने आप को थकाएं, क्योंकि इस महीने में अल्लाह ताला मोमिनों का जौक और शौक देखता है, उनकी भाग दौड़ देखता है। देखिए हमारी सच बात है, भाग दौड़ ही है और क्या है ये, और तो कुछ भी नहीं है। क्या हमारे अमल हैं, क्या हमारे रोजे और क्या हमारी नमाजें, कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला देखता है कि मेरा बंदा कितने शौक के साथ मुझे राजी करने की कोशिश कर रहा है, बख्शिश चाहने की कोशिश कर रहा है कि इसकी बख्शिश हो जाए, कितना भाग दौड़ कर रहा है जन्नत को हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला को ये अच्छा लगता है। अल्लाह ताला रोजेदारों के कि ये देख के मेहनतें, अल्लाह ताला फरिश्तों पे फख्र करता है कि देखो मेरे फरिश्तों सारा दिन ये भूखे प्यासे मेरी खातिर, सारी रात को ये नमाजों में खड़े हैं मेरी खातिर, अल्लाह ताला फख्र करता है। तो हम अपनी दिखाएं नेकी और जब नेकी कर रहे हो, देखिए आपको कोई देख रहा हो ना तो आप ज्यादा अमल अच्छा करना शुरू होते हैं। हाई फलां देख रहा है, कैसा कहेगा कि मैंने मसलन कुरान पढ़ना है, अब सारी क्लास के सामने आपको कह दिया जाए कि आप कुरान पढ़ के बताएं, तो यकीन आप ज्यादा बहुत अच्छा पढ़ के दिखाने की कोशिश करेंगे, इतने सारे लोग सुन रहे हैं। और जब रब देख रहा है कोई चीज को कि मेरा जौक और शौक कितना है, तो मैं कितना शौक दिखाऊं उसको, कितनी तेजी से आगे बढ़ूं अल्लाह ताला को दिखाने के लिए, या अल्लाह मैं तेरी खातिर ये कर रही हूं। तो फिर आप अकेले भी बैठे हैं तो अपने अंदर ये सोचें कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है इस वक्त, वो देख रहा है कि मुझे कितना शौक है। अल्लाह तू मेरी बख्शिश कर दे, मुझे इतनी हिरस है अपनी बख्शिश की, इतनी तड़प है कि मेरी बख्शिश हो जाए, आंसू बहाएं अपने रब के आगे। और देखें अगर हम अपने लिए बख्शिश मांगते हैं तो ठीक है, हमने तो मांगनी ही है, जाहिर है हमारे गुनाह हैं, हमने अपने लिए इस्तगफार करनी है, लेकिन अगर सोचें कि पूरी मस्जिद आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगे, जितने नमाजी आए हैं, हमारी तो बड़ी तमन्ना होगी कि अल्लाह करे ऐसे हो, मसलन हरम में आपके लिए बख्शिश की दुआ मांगी जाए कि अल्लाह ताला फलां को बख्श दे, हम तो अपनी कितनी खुशकिस्मती समझेंगे, अल्लाह मेरे लिए हरम में दुआ हुई। तो हरम में भी जो लोग हैं, जाहिर है इंसान है, गुनाहों से भरे पड़े हैं सभी इंसान, इससे भी बढ़ के क्या किसी का मकाम होगा कि फरिश्ते उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगे। इंसानों के ऊपर आपको इतनी खुशी होगी, हालांकि वो तो मेरे आपके जैसे इंसान है जो वहां पे नमाज पढ़ रहे होते हैं, फरिश्ते पाक मखलूक मेरे और आपके लिए अगर बख्शिश मांगे, कितनी बड़ी बात है। तो फरिश्तों को अल्लाह ताला लगा देता है कि मोमिनों के लिए इस्तिग़फ़ार करें रमजान में, कितनी बड़ी खुशकिस्मती है। मोमिन बंदे फरिश्तों की दुआएं पाते हैं इस महीने के अंदर, अल्लाह ताला ने उनका काम ही ये लगा दिया कि इनके लिए दुआएं करो, इनके लिए बख्शिश मांगो मेरे से। और भी आप देखें कि आप चाहते हैं कि फरिश्ते एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, सुबह से शाम तक मेरे लिए बख्शिश मांगे अल्लाह ताला से, और एक फरिश्ता ना मांगे, मेरा दिल करता है बहुत सारे फरिश्ते मांगे, तो ये भी मुमकिन है। जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी बीमार की तीमारदारी करें यानी उसकी आदत के लिए जाए सुबह को, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं, और अगर शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। तो सुभान अल्लाह, कितने आसान हो गया फरिश्तों की दुआएं लेना भी। इसी तरह जब आप मुसल्ले पे बैठे होते हैं, नमाज आपने खत्म कर ली, लेकिन आप फौरन उठ के जानमाज लपेट के भागते नहीं है, बल्कि बैठे में आप जिक्र अजकार कर रहे हैं, जितनी देर आप बैठे रहेंगे, जब तक आपका वुजू कायम रहता है, उस वक्त तक आपको फरिश्तों की दुआएं मिलती रहती हैं, रिश्ते दुआएं करते हैं, सुबहान अल्लाह। तो फिर हम मुसल्ले से फौरन ना उठा करें, ज्यादा वक्त गुजारें वहां पर कि हम आराम से अः अजकार करें, वहां पे तिलावत करें, जैसे हम सुबह में कोशिश कर रहे होंगे, मैंने आपको बताया था दुहा की नमाज कितने आपको अजर लाके देती है कि आपके 360 जोड़ों का भी सदका हो जाता है और आपके लिए एक हज और उम्रे के बराबर भी सवाब मिलता है। अगर आप ये नमाज जिसको इशराक की कहते हैं, यानी आप फजर से बैठे और आप उठे नहीं, आपने फजर की नमाज भी लंबी करके पढ़ी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फजर के फर्ज पढ़ते थे तो उन फर्जों में लंबी की रात किया करते थे, ठीक है? तो लंबी ये तिलावत आपने करनी है, लेकिन जिनको हिफ्ज होगा जाहिर है वही कर सकते हैं लंबी की रात, जिनको नहीं भी हिफ्ज है तो आपको ये सारी छोटी छोटी सूरतें तो आती होंगी ना। मिसाल के तौर पे आपको सूरह फलक, नास, सूरह इखलास, काफिरून, सूरह नसर मसलन, ये छोटी छोटी सूरतें तो आती होंगी, तो जितनी भी आपको छोटी सूरतें आती सारी पढ़ लें, सारी आप पढ़ सकते हैं ताकि आपकी रकात लंबी हो जाए, ठीक है, इस नियत के साथ। और जिनको लंबी लंबी सूरतें भी आती हैं तो वो उस तरह से पढ़ लें, 30वां सिपारा जिनको हिफ्ज है वो उसको स्टार्ट कर लें, लेकिन फजर की फर्ज उनको लंबा कीजिए। सुन्नत की बात नहीं, फर्ज की बात, उसको जितना लंबा आप कर सकते हैं। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे करते थे कि जब नमाज शुरू कर देते अंधेरा होता था और नमाज खत्म करते थे थोड़ी 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 रोशनी शुरू हो जाती थी। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि आप जब फजर पे बैठते हैं तो उसके बाद पहले एकदम से लाइट नहीं होती, हल्की हल्की रोशनी शुरू हो जाती, तो उतनी लंबी नमाज पढ़ते थे। तो चले उतनी लंबी ना सही, जितनी भी आप पढ़ सकते हैं उतनी पढ़ें, और उसके बाद फिर आप ये जिक्र अज़कार और आप कुरान पाक की तिलावत, और फिर आप बैठे रहें वहीं पे और फिर आप इशराक पढ़ के उठेंगे तो हज और उम्रे का सवाब मिल गया आपको, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर आप इतना नहीं कर सकते, देखिए हर एक की सकत और हिम्मत अलग अलग है, सबको नहीं मैं कहती कि सारे एक ही काम शुरू कर दें। कोई लोग ऐसे हैं जो कुरान ज्यादा पढ़ सकते हैं, कोई नमाजें ज्यादा पढ़ सकते हैं, कोई कोई और काम ज्यादा कर सकते हैं। छोटे बच्चों वाली माएं हैं, अब उन्होंने स्कूल जाना है तो उनके लिए मुमकिन नहीं होता, चलो वीकेंड पे कर लें, चलो वीकेंड पे आप हज और उमरे का सवाब ले लें, ठीक है ना, एक दिन ले लें हफ्ते में। तो इस तरह से करके आप भी पीछे नहीं रहेंगे, महरूम नहीं रहेंगे। और जो ये पढ़ भी लें या ना पढ़ सके, वो अगर सो जाते हैं उनको नींद आ गई, फजर पढ़ के उन्होंने अस्कार किए तिलावत की और वो इतनी देर नहीं बैठ सके सो गए, तो कोई बात नहीं, जब आप उठे ना तो तब आप पढ़ लें, दो भी पढ़ सकते हैं, चार भी, छह भी और आठ भी, ठीक है। अब क्या ये सवाब नहीं होगा, हज और उमरे वाला सवाब नहीं होगा, लेकिन ये सलातुल अव्वाबीन कहलाती है। सलातुल अव्वाबीन मगरिब के बाद नहीं होती, ये होती है सलातुल अव्वाबीन। अव्वाबीन का मतलब अव्वाब कौन होता है, जो बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला, तो आप अव्वाब बन सकते हैं, ये अव्वाबीन की नमाज है जो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, बार बार आते हैं फजर पढ़ के उसके बाद जोहर तक, यानी ऐसे नहीं रहते कि बगैर नमाज के, उस वक्त फिर वो नमाज पढ़ते हैं जिसको सलात दुहा या सलातुल अव्वाबीन कहते हैं। तो अल्लाह तआला के यहाँ अव्वाब कहला सकते हैं आप। इसी तरह अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे खलील यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे तीन बातों की नसीहत की है। पहली बार बात कि हर महीने 3 दिन के रोजे रखूं, तो या मैं ईद के रोजे रख सकते हैं 13, 14 और 15 जब रमजान खत्म हो जाए। दूसरी बात 2 रकत दुहा की नमाज पढ़ा करूं, यानी जब सूरज बुलंद हो जाए, इशराक नहीं दुहा, यानी जब जिसको कहेंगे 9-10 बजे का टाइम, तो दुहा के नफल 2 पढ़ लूं, क्योंकि तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वो टाइम भी जो ऐसा होता है कि बड़ा मसरूफियत का वक्त होता है, घर वालियां घर समेट रही होती हैं, सफाइयां ये वो, और बच्चे कहीं स्कूल में होते हैं, लोग कहीं ऑफिस में होते हैं, हर कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो पढ़ सकता है वो इसको जरूर एहतमाम करे। अब खास तौर पे जो घरों में रहने वाली खवातीन है वो जरूर पढ़ सकती हैं दुहा के ये 2 रकत। देखें एक बात याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जो औकात या जो जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग अल्लाह ताला का जिक्र नहीं करते और गाफिल रहते, उनमें अल्लाह का जिक्र का बड़ा इतमाम करते थे। मिसाल के तौर पे बाजारों में लोग गाफिल रहते हैं ना, उसकी भी मैं आपको जिक्र बताऊंगी कि आप कैसे लाख नेकियां कमा सकते हैं बाजार में वो जिक्र करके। और इसी तरह शाबान के महीने को फरमाया कि लोग इसमें गाफिल रहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे उसके अंदर रोजे रखे। इसी तरह और जितनी जगहों पर या जिन औकात में लोग गाफिल रहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें नमाज पढ़ते थे। इसी तरह जैसे रात का आखिरी पहर, उस वक्त बड़ी इंसान को गहरी नींद आती, जो लोग लेट भी सोएं तो चलो 11-12 बजे भी सो जाते हैं, तो फिर भी वो उस वक्त उठ नहीं पाते, उस वक्त की नींद बहुत गहरी होती है। बीमार भी जो होता है उस वक्त, उसको फजर के करीब उसको भी जरा करार आ जाता है, वो भी सो जाता है थक के। तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के नमाज पढ़ते थे। तो ये दोहा के भी दो जो रकत है ना, ये उन लोगों के लिए वाकई जो अवाबीन है, बार बार अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले, कि क्योंकि इंसान को खींच के अपने आप को लाना पड़ता है कामों में से, वो बहुत मसरूफ होता है इस वक्त। तो जो कहीं ऑफिस में है उनके पास अपना रूम हो, वो बस ये 2 रकत कितनी मुश्किल है। 2 रकत तो आप एक कुलवल्ला से पढ़ लें, एक आप सूरह कौसर 1 रकत में पढ़ लें, मुख्तसिर भी पढ़ ली तो तब भी आपकी ये 2 रकत हो गई। और तीसरी बात, वितर पढ़े बगैर ना सो। ये क्यों कहा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हम तो कहते हैं वितर आखिर में पढ़ें, तो वितर आखिर में आप पढ़ सकते हैं अगर आपने बाद में उठना है, लेकिन अगर आपने उठना नहीं है तो फिर आप वितर पढ़े बगैर ना सोएं, अगर आप फजर पे ही उठते हैं तो। तो ये 3 बातों की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नसीहत फरमाई थी। लिहाजा हमें भी कोशिश करनी है कि हम दुहा के नवाफिर का एहतमाम कर लें। अगर हम इशराक नहीं भी पढ़ सकते, या जिस दिन आप इशराक ना पढ़ सकें, तो चलें आप उस दिन ये तो पढ़ सकते हैं कि जब भी आप सो के उठ रहे हैं या कामों से फारिग होके, आप जोहर से पहले पहले तक, यानी जोहर से 15 मिनट पहले तक, अजान से, जोहर की अजान से 15 मिनट पहले तक आप लोग ये पढ़ सकते हैं। 12 बजे का ना सोचा करें, क्योंकि घड़ियां तो आगे पीछे होती रहती हैं, 12 कोई टाइम नहीं है जिसका आप ध्यान रखें। आप जोहर की अजान देखें कितने बजे होती है, बाज जगह पे 1 बजे होती है, तो 1:45 से पहले पहले आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें 12 की कोई बात नहीं है। तो लिहाजा आप जो इशराक नहीं भी पढ़े या पढ़ भी लिया है, तो उसके बाद दोबारा उठे हैं तो 2 और पढ़ लें नफल, फिर अपने काम शुरू करें। बाज दफा रात की नींद पूरी नहीं हुई होती, तो इंसान फजर के बाद बहुत ज्यादा देर नहीं जाग सकता, तो जो नहीं जाग सकते तो फिर वो ये कर लें। अल्लाह ताला ने सबके लिए देखें दरवाजे खुले रखे हैं, कोई भी महरूम नहीं रहता अल्लाह ताला की रहमत से। लिहाजा अपने आप को बस ये शौक दिलाएं कि मैंने ऊंचे दर्जे पाने हैं जन्नत के, जन्नत इस वक्त उसकी सेल लगी हुई है, मैं ज्यादा करूं, क्योंकि एक एक नेकी कई गुना ज्यादा इस वक्त बढ़ के मिल रही है। एक नफल फर्ज के बराबर तोला जाएगा इस महीने में किया होगा तो, एक फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो जाएगा, तो कितना ज्यादा फायदा है। लिहाजा इस महीने में, जो महीना अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भी जिसमें लगा दिया कि बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार मांगे, तो मेरे तो खुशी का कोई आलम ही नहीं होना चाहिए। इतनी खुशी मुझे होनी चाहिए कि मुझे ये महीना मिल गया, अब मैं इसमें और तेज़ दौड़ लगाऊं, मेरे गुनाह तो झड़ते जा रहे हैं, फरिश्ते भी मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं, और मैं ये काम करके नेकी के, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, और बहुत बहुत बड़े बड़े दर्जे ले सकती हूँ। तो इस जज्बे के साथ आगे बढ़िए। आज का जो जिक्र मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जुमे के दिन हम जिक्र जो करते हैं वो क्या है, दरूद शरीफ, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन फरमाई है और इसके बड़े ही फवायद हैं। क्योंकि जो दरूद शरीफ है ना, ये ना सिर्फ ये कि ये एक जिक्र भी है, बल्कि एक दुआ भी है। वो पता है दुआ ऐसे कि इससे आपकी दुआएं जो आप नहीं मांग सके, कभी होता है ना इंसान मिसाल के तौर पे इतना थका हुआ है, या नींद इतनी आ रही है, या रोजा इतना लग रहा है, तो आपसे दुआएं नहीं मांगी जा रही, तो आप दरूद शरीफ सिर्फ पढ़ लें। आपने दरूद शरीफ सिर्फ पढ़ लिया ना, तो आपकी कई हाजतें सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने से ही अल्लाह ताला पूरी फरमा देगा, सिर्फ दरूद शरीफ पढ़ने से, सुभान अल्लाह। वैसे तो रोजेदार के लिए फरिश्ते सारा दिन, यानी आप थके भी होते हैं ना, तो फरिश्ते आपके लिए दुआएं कर रहे होते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको लगाया हुआ। लेकिन आप दरूद शरीफ पढ़ लें, साथ आप का जो रोजा है उसको आपने और डेकोरेट करना है अपने जिक्र के साथ। तो जिक्र तो बैठे बैठे भी हो सकता है। बाज़ ख़वातीन पूछती हैं कि जब हम नमाज रोज़ा नहीं कर सकते तो हम क्या करें। अब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करें, आप दुआएं भी करें और आप मसलन दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। और मैंने आपको सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तो आपको बता ही दिया था। तो ये अल्लाह ताला को बड़ा महबूब है कलिमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा महबूब है, पूरी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। तो इसके अंदर कितनी बड़ी खैर होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको महबूब रखा। अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है जब बंदा ये कलिमा अदा करता है, तो आप वो पढ़ते रहें। और दुरूद शरीफ पे तो आप के ऊपर बैठे बैठे अल्लाह ताला की 10 रहमतें नाजिल हो जाएंगी, 10 नेकियां आपके लिए लिखी जाएंगी, 10 गुना आपके माफ हो जाएंगे, 10 दर्जे आपके बुलंद हो जाएंगे। तो और क्या चाहिए। और कयामत के दिन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब होगी। जितना ज्यादा कोई दुरूद पड़ेगा ना, उतना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा कयामत के दिन। तो लिहाजा दुरूद शरीफ पढ़ें। और दुरूद इब्राहिमी तो सबको ही आता है जो नमाज में हम पढ़ते हैं, वो आप पढ़ें तो बहुत अच्छा है। अगर मुख्तसर दुरूद भी पढ़ना चाहें तो अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद, बस इतना सा दुरूद भी काफी है, ये भी दुरूद हो गया। ठीक है, तो जब कोई इंसान दुरूद पढ़ता है, अल्लाह ताला ने इसका हुक्म कुराने पाक में दिया है हमें कि ए ईमान वालों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पढ़ो। और जुमे के दिन तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पे ताकीद फरमाई, तो आम दिनों में भी आप पढ़ें लेकिन जुमे में खास तौर पे, यानी जब से जुमे यानी जिसको हम जुमेरात की रात कहते हैं, जुमा तो शुरू हो गया, उस वक्त से ही आप शुरू कर दें। पूरा दिन जुमे का आपकी जुबान से दुरूद शरीफ नहीं हटना चाहिए, दुरूद शरीफ नहीं, उठते बैठते, चाहे आपका रोजा है चाहे रोजा नहीं है, चाहे आप लेटे में हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। देखिए बहुत फवायद हैं दुरूद शरीफ पढ़ने के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल जाए कयामत के दिन, तो उस दिन इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। ये परेशानियों से भी निजात देता है दुरूद शरीफ। इसलिए जब भी लोग पूछते हैं कि जी हमारी ये परेशानी, हम क्या वजीफा करें, तो वजीफा अपना दुरूद शरीफ बनाए ना, ये परेशानियों से निजात देता है। दुरूद शरीफ नहीं आपने छोड़ना, जो भी परेशानी है अल्लाह ताला दूर कर देगा आपकी परेशानी। तो ये आप दुरूद पढ़ेंगे आज, और आज की जो दुआ भी है बहुत ही ऐसी दुआ है जो कि हमें हर वक्त ही मांगनी चाहिए वैसे तो, लेकिन खास तौर पे अभी जब हम इफ्तार करने लगे या जुमे के दिन, तो खास तौर पे एक ऐसी घड़ी है असर की से मगरिब के दरमियान, जुमे के दिन खास तौर पे, जिसमें दुआ कबूल होती है। तो इस घड़ी को पाने की कोशिश कीजिए। ये घड़ी पता नहीं है किसी को कि कौन से वक्त में होती है, मगर इतनी सी विंडो है ये असर से मगरिब के दरमियान, और बहुत ही छोटी होती है। तो इसमें ज्यादा कसरत करें दुआओं की, दुरूद शरीफ भी पढ़ें दुआओं की भी कसरत करें। और ये दुआ जो आज मैं आपको बता रही हूं, ये बहुत ही जामे दुआ है, यानी इसमें आपने सब कुछ ही मांग लिया, छोटी सी दुआ में हर चीज मांग ली। क्या है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिनल खैरि कुल्ली, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ सारी भलाई का, सारी खैर का, खैर ही खैर मांगती हूँ तुझसे, आजिली व आजिली, आइन के साथ पहले फिर अलिफ के साथ, आजिली यानी जल्दी मिलने वाली, यानी इस दुनिया में भी अल्लाह मुझे भलाई देना, व आजिली और देर से मिलने वाली यानी आखरत की भी भलाई। और कई अब भलाइयां हमें क्या पता हमारे लिए कौन सी भलाई है, अब हम दुआएं भी कई मांगते हैं ना, हमें पता भी नहीं होता इस चीज की भी तो हमें मांगनी चाहिए थी, फिर ख्याल आता है हाँ ये तो हमने कभी मांगी ही नहीं। तो इस दुआ के अंदर देखें, सुभान अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखा दिया, मा आलिम तु मिन हुआ मा लम आलम, जिस भलाई को मैं जानता हूं और जिसको नहीं जानता, कई भलाइयां नहीं जानते हम, उसमें हमारी भलाई हमने कभी मांगी नहीं। तो इसमें आपने जब ये कह दिया ना कि दुनिया की भी सारी भलाइयां, आखरत की भी सारी भलाइयां, और आखरत में पता नहीं अब मुझे क्या कौन सी भलाइयां चाहिए हो या दुनिया में कौन सी भलाई चाहिए, अल्लाह ताला सारी भलाइयां दे देना, मुझे पता है या नहीं पता। वाऊज़ु बिका, और अल्लाह मुझे बचा लेना किससे, अपनी पनाह में ले लेना किससे, मिन मिनश शर्रि कुल्लिही, शर से, सारे के सारे शर से, हर किस्म के शर से। अब पता है शर भी कितनी किस्मों के होते हैं, कई तरह के शर होते हैं, कई तरह के फितने। आजिली व आजिली, अल्लाह दुनिया के भी शर से और आखरत के भी शर से। मा आलिम तुम इन हुआ मालम आलम, जिनका मुझे पता है और जिनका नहीं पता। हमें तो कई शर के पता ही नहीं है कि कौन से शुरूर ऐसे हैं, कितनी जगहों पे शर है, किस की आंख में शर है, किसी की किसी जगह में शर है, किस बात में शर है, किस अमल में शर है, कहीं बैठने में शर है, कहीं जाने में शर है, हमें नहीं पता इस दुनिया में। और आखरत में भी हमें वहां के शर कहाँ पता है। तो अल्लाह ताला से हमने सारी बातों के बारे में मांग लिया कि ए अल्लाह तो सारे किस्म के शर हमसे दूर रखना, तू हमें बचा ले, तू हमें अपनी पनाह में ले ले अल्लाह। तो बहुत प्यारी ये दुआ है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए और इस महीने में हम सब की बख्शिश फरमा दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।